नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओशो ध्यान जगत में, ओशो रेडियो हिंदी के माध्यम से। जन्म, मृत्यु और जीवन, यही है हमारी ऊर्जा की यात्रा। और आज का यह एपिसोड इसी यात्रा को समर्पित है।
जाग रहे हो मैंने जाना, करवट बदल रहे जन्मों से, जागो जग है, जागो जग है, मुसाफिर खाना। जागो अब तो नींद से, जागो जागो अब तो नींद से, जागो सोते सोते उम्र गुजारी, सोते सोते उम्र गुजारी, अब तो नींद से जागो। सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया, सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया, ध्यान का खजाना, ध्यान का अनमोल खजाना, हर कोई संग लेकर आया। मैं नहीं आया हूँ सिखाने, मैं नहीं आया हूँ सिखाने,
जागो अब तो नींद से, जागो जागो।
मन को कल पर मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो। पग पग पर होती है परीक्षा, पग पग पर होती है परीक्षा, जागने को धर्म बना लो।
आइए उतरते हैं श्रवण ध्यान में ओशो के इस प्रवचन के साथ। आज का प्रवचन जीवन क्रांति के सूत्र वॉल्यूम 1 से लिया गया है और संगीत म्यूजिक फ्रॉम द वर्ड ऑफ ओशो मानिकी और मार्कोस सर्किल ऑफ लाइट से लिया गया है।
पहला सूत्र आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, जीवन क्या है ये हमें ज्ञात नहीं है। अगर इतना हमें अनुभव हो जाए तो हम जीवन को जानने की यात्रा पर निकल सकते हैं। जीवन क्या है इसका हमें कोई पता नहीं है। अगर ये हमें अनुभव हो जाए तो हम जहां जड़ होकर बैठ गए हैं वहां से हिलना हो सकता है और नई यात्रा शुरू हो सकती है। अगर हम ये मानने को राजी हो जाएं कि जो हम जानते हैं उतना ही जानने को नहीं है, जानने को बहुत कुछ बाकी और शेष है, अगर हम ये मानने को राजी हो जाएं कि जो हमें दिखाई पड़ता है वही पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ अनदिखा रह जाता है, बहुत कुछ अनसुना रह जाता है, बहुत कुछ अस्पर्शित रह जाता है, अगर हमें ये ख्याल आ जाए कि हमारे चारों तरफ जितने से हम परिचित हैं उससे बहुत ज्यादा अपरिचित सदा शेष रह जाता है, तो शायद हम अपरिचित को जानने की दिशा में आंखें उठाएं, कदम बढ़ाएं, हाथ फैलाएं, कुछ श्रम करें, कुछ मेहनत करें, कोई नाव बनाएं, कोई मकान बनाएं, उस तरफ जाने का कोई रास्ता, कोई प्रयत्न, कोई साधना शुरू हो। जीवन की क्रांति एक साधना है, जीवन को जानना जन्म ले लेने से पूरा नहीं हो जाता। कोई आदमी पैदा हो गया इसलिए जीवन को नहीं जान लेता है। जन्म तो बीज की भांति है, अगर बीज को हम बगीचे में बोएं तो वो कभी फूल बन सकता है। बीज के भीतर फूल छिपा है लेकिन बीज खुद फूल नहीं, और अगर बीज ये समझ ले कि मैं फूल हूं तो बात खत्म हो गई, फिर बीज बीज ही रह जाएगा, सड़ेगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन कभी फूल नहीं बन सकेगा। बीज को जानना पड़ेगा कि वो कुछ होने की यात्रा है, कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी, कोई पोटेंशियलिटी, वो अभी है नहीं, हो सकता है, आदमी हो सकता है कुछ, आदमी है नहीं, हम कुछ हो सकते हैं, हम कुछ है नहीं, हम सिर्फ होने की एक संभावना मात्र है, हम एक बीज है जो टूट जाए तो फूल खिल सकते हैं, और अगर न टूटे तो सड़ सकता है, नष्ट हो सकता है, दुर्गंध फैल सकती है। जिस फूल के, जिस बीज के फूल बन जाने से सुगंध फैलेगी, आकाश में नृत्य होगा रंगों का, वही फूल अगर न बन पाए, बीज ही रह जाए, तो सिर्फ दुर्गंध फैलेगी, न कोई नृत्य होगा न कोई सुगंध होगी, सिर्फ दुर्गंध फैलेगी, सड़ेगा बीज, नष्ट होगा और मरेगा। हम मरते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन न तो हम जीवित हैं और न हम जीवन को उपलब्ध होते हैं। हम उन बीजों की तरह हैं जो पागल हो गए हों और समझते हैं कि हम फूल हो गए। मनुष्य को जानना पड़ेगा कि वो सिर्फ बीज है, एक संभावना है, कुछ हो सकता है लेकिन हो नहीं गया। ये मैं पहला सूत्र कहना चाहता हूं आपसे, हम हैं कुछ होने के लिए। जैसे कोई तीर किसी प्रत्यंचता पर चढ़ा हो, कोई तीर किसी धनुर्माण पर चढ़ा हो, और धनुष पर चढ़ा हुआ तीर सिर्फ संभावना है, वो जा सकता है वहां जहां अभी गया नहीं, वो पहुंच सकता है उन लक्ष्यों पर जो बहुत दूर है, लेकिन अभी वो धनुष पर चढ़ा है, अभी कहीं गया नहीं। आदमी धनुष पर चढ़ा हुआ तीर चल जाए तो परमात्मा तक पहुंच सकता है, रुक जाए तो धनुष पर ही रह जाता है। हम शरीर पर चढ़ी हुई आत्माएं हैं, चल जाए तो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, रुक जाए तो कब्र के अतिरिक्त और कहीं नहीं पहुंचते, कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन जन्म को ही हमने सब कुछ समझ लिया। एक आदमी पैदा हो जाता है और मान लेता है कि बस बात पूरी हो गई, अब जीना है, जो जीवन मिला ही नहीं उसे जिएंगे कैसे, सिर्फ जन्म मिला है, जन्म जीवन नहीं है, जन्म केवल मौका है, चाहे तो जीवन मिल सकता है, चाहे तो नहीं भी मिल सकता है। लेकिन चारों तरफ सारे लोग मानते हैं कि यही जीवन है, बच्चा पैदा हो गया, बड़ा हो गया, शिक्षित हो गया, नौकरी कर रहा है, मकान बना रहा है, धन कमा रहा है और जीवन मिल गया, ये जीवन है। फिर मकान बनाते, धन कमाते, नए बच्चों को पैदा करते, ये आदमी एक दिन मर जाता है। ये जन्म से लेकर मरने तक की पूरी यात्रा हो जाती है। जीवन का रस कहाँ मिलता है, जीवन की सुगंध कहाँ मिलती है, जीवन का संगीत कहाँ सुनाई पड़ता है, जैसे कोई आदमी वीणा को कंधे पर रखे हुए जीवन भर घूमता रहे और कहे कि मेरे पास संगीत है, वो झूठ नहीं कहता है लेकिन झूठ कहता है। एक अर्थ में वो सही कहता है क्योंकि वीणा उसके पास है जिससे संगीत पैदा हो सकता है, लेकिन वीणा ही संगीत नहीं है। और एक आदमी जिंदगी भर वीणा को रखे घूमता रहे तो भी संगीत अपने आप पैदा नहीं हो जाए। वीणा स्वयं संगीत नहीं है, वीणा से संगीत पैदा हो सकता है। जन्म स्वयं जीवन नहीं है, जन्म से जीवन पैदा हो सकता है। और कोई चाहे तो जन्म की वीणा को कंधे पर रखे हुए मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच जाए, उसे जीवन नहीं मिल जाए। जन्म तो मिलता है माँ बाप से, जीवन कमाना पड़ता है स्वयं। जन्म मिलता है दूसरों से, जीवन पाना पड़ता है खुद। जन्म मिलता है, जीवन खोजना पड़ता है। जीवन की खोज एक कला और जन्म लेना बिल्कुल ही प्राकृतिक घटना है जिसका कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। इतना ही मूल्य है कि उसके बाद जीवन मिल सकता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों कभी कोई एक आदमी जीवन को उपलब्ध होता है। हम सब मरे हुए ही जीते हैं और मरे हुए ही मर जाते हैं। हम सिर्फ जन्मते हैं और मर जाते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच जो लंबा फासला है, हम सोचते हैं वही जीवन है। धन जरूर हम इकट्ठा करते हैं, ज्ञान भी इकट्ठा करते हैं, पद प्रतिष्ठा भी इकट्ठी करते हैं, और फिर शायद सोचते हैं ये जो इकट्ठा कर लिया यही जीवन है। कितना ही धन इकट्ठा हो जाए, जीवन का धन से क्या संबंध, और कितने ही शास्त्रों का ज्ञान जान लिया जाए और कितना ही बड़ा कोई पंडित हो जाए, जीवन को जानने से पांडित्य का क्या संबंध। और चाहे कोई सारे जगत को जीत ले, सारे पृथ्वी का सम्राट हो जाए, और चाहे कोई चांद तारों पर जाके झंडे गाड़ दे, लेकिन इस सब से जीवन का क्या संबंध। मैंने एक रूसी लोक कथा सुनी, मैंने सुना है कि एक कवि एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, सुबह सूरज निकला है और वो कवि उस वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी कविताएं पढ़ रहा है। वहां कोई भी नहीं है, सिर्फ वृक्ष पर एक कौआ बैठा हुआ है। वो कवि अपनी पहली कविता पढ़ता है और कहता है कि मैंने सारी दुनिया के धन को पा लिया, मैं सोलोमन का खजाना पा लिया हूं, मैं कुबेर हो गया हूं, मेरे पास सब कुछ है, जो भी पाया जा सकता है वो मैंने पा लिया है। और वो बहुत गौरव से चारों तरफ देखता है, वहां तो कोई भी नहीं है, सिर्फ ऊपर कौआ बैठा हुआ है। वो कौआ जोर से हंसता है और कहता है सो व्हाट, इससे क्या हुआ। उस कवि ने बहुत घबरा के देखा, वहां कोई भी नहीं है, कौआ ऊपर बैठा हुआ। उसने कहा क्या ये कौआ बोल रहा है, सो व्हाट। मैंने बड़े बड़े मनुष्यों के सामने अपनी कविताएं पढ़ी है और लोगों ने प्रशंसा की है, और तू एक मूर्ख कौआ कहता है सो व्हाट, इससे क्या हुआ। वो कौआ कहता है कि निश्चित ही मैं कहता हूं, क्योंकि जहां तक हम समझते हैं धन की मूलता मनुष्यों को छोड़कर न किसी पशु को है, न किसी पक्षी को है, न किसी पौधे को। तो अगर तुम मनुष्यों के बीच में ये कविता पढ़ोगे कि मैंने सोलोमन का खजाना पा लिया है, तो लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि वे भी सोलोमन का खजाना भीतर से पाना चाहते हैं। वे उतने ही ना समझे जितने ना समझ तुम हो, उनकी ना समझी कविता नहीं बन पाती, तुम्हारी ना समझी कविता बन गई है, इसके अतिरिक्त और कोई फर्क नहीं। वो कौआ कहता है लेकिन पा लिया तुमने सारा खजाना, फिर क्या होगा, इससे क्या होता है। उस कवि ने कहा ना समझ कौए तू समझेगा नहीं, मैं तुझे दूसरी कविता सुनाता हूं। लेकिन वो आदमी तो वही है, कविताएं कितनी ही करे उसका मन वही है, उसका लोभ वही है। दूसरी कविता में वो कहता है मैंने सारी पृथ्वी जीत ली, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूं, मुझसे ऊपर अब कोई भी नहीं है, सब मेरे पैरों के नीचे। वो कौआ फिर हंसता है और कहता है सो व्हाट, इससे क्या होगा। माना कि तुम सारे लोग तुम्हारे नीचे आ गए, तुम्हारे पैरों के नीचे, और तुम सबके मालिक हो गए, लेकिन इससे होगा क्या, इससे तुम पा क्या लोगे। उस कवि ने क्रोध में तीसरी कविता पढ़ी, उसने कहा छोड़ो इसे भी, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, मैंने गीता कुरान उपनिषद बाइबल सब पढ़ लिए हैं, जितना भी ज्ञान है मैंने जान लिया, मुझसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, मैं सर्वज्ञ हो गया हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। उस कौए ने कहा सो व्हाट, इससे क्या होगा, तुमने सब जान लिया तो भी क्या होगा, एक चीज फिर भी अनजानी रह गई, तुमने सब धन पा लिया लेकिन एक धन बिना पाया रह गया, तुमने सारा साम्राज्य पा लिया लेकिन एक राज्य अपरिचित रह गया। वो कौआ अपनी बातें कहता जाता है, कभी क्रोध से कविता फेंक कर चल पड़ता है। उस कौए से किसी दूसरे कौए ने पूछा, तू हर बात में कहता गया सो व्हाट, इससे क्या होगा, कविता कौन सी पढ़ी जाती कि तू दाद देता। उस कौए ने कहा एक ही कविता है जीवन की, और वो जीवन को जानने की, न तो धन को जानने से कविता पैदा होगी, और न यश को जानने से, और न पांडित्य को जानने से, एक ही कविता है जीवन की, वो जीवन को जानने से पैदा होती है, और उस कवि को उस कविता का कोई पता नहीं है। जब तक वो कविता ना गाता तब तक मैं कहता ही चला जाता सो व्हाट। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जब आपका मन कहे कि सारा धन इकट्ठा कर लो तो अपने से पूछना सो व्हाट, क्या होगा इससे, और जब मन कहे कि सारी दुनिया जीत लो, राज सिंहासनों पर पहुंच जाओ, तो अपने मन से पूछना सो व्हाट, इससे क्या होगा। और जब मन इस तरह की दौड़ों की बातें करे जिनकी बातें मन रोज करता है, तो निरंतर अपने से पूछना इससे क्या होगा। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता और जीवन के स्वर को नहीं जानता, मेरा सारा जानना सारा पाना क्या अर्थ रखता है। ये प्रश्न उठ जाए तो आदमी की दुनिया में धर्म की शुरुआत हो जाती है। उस आदमी को मैं धार्मिक नहीं कहता जो पूछता है ईश्वर है या नहीं, धार्मिक आदमी को ईश्वर से कोई भी प्रयोजन नहीं। उस आदमी को मैं धार्मिक नहीं कहता जो कहता है सृष्टि किसने बनाई, सृष्टि के बनाने के न बनाने के प्रश्न वैज्ञानिक पूछ सकते हैं, धार्मिक आदमी को दो कोणी का मतलब नहीं है कि किसने बनाई। मैं उस आदमी को धार्मिक नहीं कहता जो कहता है कितने नर्क हैं कितने स्वर्ग, स्वर्ग और नर्क से धार्मिक आदमी को क्या प्रयोजन, नर्क की चिंता वो करते हैं जो ऐसे काम कर रहे हो कि नर्क जाना पड़े, या स्वर्ग की चिंता ऐसे लोग करते हैं जो नर्क जाने के काम कर रहे हैं लेकिन स्वर्ग का पता चल जाए तो कुछ रुष्पत दे के स्वर्ग में भी प्रवेश पा सके। लेकिन धार्मिक आदमी को स्वर्ग नर्क से क्या प्रयोजन, धार्मिक आदमी का एक ही प्रश्न है, एक ही जिज्ञासा है, उसका एक ही अल्टीमेट कंसर्न जिसको कहें, उसका जो आखिरी लगाव है वो एक है इस बात को जान लेने का कि मैं हूं लेकिन मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व है लेकिन मेरा अस्तित्व क्यों है, अगर मैं ना होता तो क्या हर्ज था, और अगर मैं हूं तो प्रयोजन क्या है, क्या मैं अपने इस होने को क्षुद्रतम में खोता चला जाऊं, रोज सुबह उठूं और वही करूं 40-50 वर्षों तक, रोज दफ्तर रोज दुकान रोज मकान रोज सोना रोज खाना, क्या मैं 50 वर्षों तक एक कोल्हू के बैल की तरह यही करता रहूं, या ये भी पूछूं कि मैं क्यों हूं किस लिए हूं क्या प्रयोजन है मेरे होने। धार्मिक आदमी ये जानना चाहता है कि मैं क्यों हूं, आखिर मेरे होने की जरूरत क्या है। और जैसे ही कोई आदमी ये प्रश्न पूछेगा कि मेरी जरूरत क्या है, वैसे ही वो पूछना शुरू करेगा कि मैं ये भी तो जान लूं कि मैं कौन हूं क्या हूं कहां से हूं क्यों हूं, इस सारी बात की खोज की तरफ अगर ध्यान चला जाए तो जीवन को जाना जा सकता है। लेकिन हम तो जीवन वहां खोज रहे हैं जहां जीवन नहीं, हम तो वहां खोज रहे हैं जहां जीवन का कोई संबंध नहीं। हम वहां खोजते रहे हम खोजते खोजते खुद मिट जाएंगे और जीवन का हमें कोई पता नहीं पड़ पाए। मरते हुए आदमी से पूछो, वो भी यही कर रहा था जो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी मरने वाले लोगों से उसने ये नहीं पूछा। हर आदमी मर रहा है और हर आदमी वही कर रहा है जो दूसरे मरने वालों ने किया, और कोई भी ये नहीं पूछ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं। एक रात एक महल के ऊपर सम्राट सोया है, सो नहीं पा रहा है, नींद नहीं लग रही है। किस सम्राट को नींद लगती? सम्राट को नींद लगना बहुत मुश्किल, जो बहुत लोगों की नींद छीन लेते हैं उनकी खुद की नींद कैसे लग सकती? वो करवटें बदल रहा है। सम्राट हमेशा ही करवटें बदलते, और इसलिए सम्राटों को करवट बदलने में सुविधा रहे इसलिए बहुत अच्छे गद्दे तकियों का इंतजाम करना पड़ता है। सोने वाला बहुत गद्दे तकियों की फिक्र नहीं कर, जिसे नींद आती है उसे जमीन भी बहुत बहुमूल्य गद्दी हो जाती, और जिसे नींद नहीं आती उसी गद्दियां भी कांटे ही मालूम पड़ती रहती है। वो करवटें बदल रहा है, आधी रात बीत गई है तब उसे ख्याल आता है कि कोई ऊपर छप्पड़ पे चल रहा है। वो पूछता है कौन है ऊपर, वो घबरा गया। सम्राटों के पास बंदूकें हैं, तलवारें हैं, पहरे हैं, असल में पहरे उन्हीं के पास हैं जो भीतर बहुत डरे हुए, जो भीतर डरा हुआ ना हो उसके आसपास पहरे की कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ डरे हुए आदमी के आसपास बंदूकों के पहरे होते। तो एकदम डर गया है, कौन है ऊपर, उसने चिल्ला के पूछा है। ऊपर से किसी ने कहा घबराइए मत, परेशान मत होइए, आपसे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा ऊंट खो गया है, मैं अपने ऊंट को खोज रहा हूं। उस सम्राट ने कहा कोई पागल आदमी मालूम पड़ते हो, महलों की छतों पर ऊंट खोया करते हैं, छप्परों पर खपड़ों पर ऊंट खोते हैं। सम्राट ने पहरेदार को उठाया और कहा कि देखो कौन है ऊपर, पकड़ो उसे, लेकिन वो आदमी मालूम कहां चला गया। लेकिन सम्राट रात भर सोचता रहा इसका मतलब क्या है, कोई आदमी छप्पर पर ऊंट खोजता है। वैसे ही नींद नहीं आई, रात भर सोचता रहा। सुबह सुबह झपकी लगी तो उसे सपना दिखाई पड़ा कि सपने में वो आदमी फिर छप्पर को ऊंट खोज रहा। वो उससे पूछता है कि क्या ऊंट छप्पड़ों पर खोजे जाते हैं, ऊंट छप्पड़ों पर खोते ही नहीं। तो वो आदमी उसे सपने में कहता है और तुम वहां जीवन खोज रहे हो जहां जीवन खोया ही नहीं। अगर जीवन मिल सकता है धन में, यश में, पद में, प्रतिष्ठा में, तो ऊंट भी छप्पड़ों को मिल सकते हैं। ऊंट तो छप्पड़ों को खो भी सकते हैं, लेकिन जीवन न तो धन में खोया है, न पद में, न बाहर के सामान में, न मकानों में। जीवन तो वहां है जहां तुम। वो घबरा के जाग गया है, सुबह वो अपने दरबार में बैठा है, चिंतित है, और तभी एक आदमी दरबार में घुसता हुआ भीतर चला आया। द्वारपाल ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। द्वारपाल ने उससे पूछा भी कहां जाते हो, उस आदमी ने कहा कि मैं धर्मशाला में थोड़े दिन के लिए मेहमान होना चाहता हूं, मैं सराय में रुकना चाहता हूं। उस द्वारपाल ने कहा पागल हो गए हो, मालूम होता है इस बस्ती में पागल छूट गए हैं। रात एक पागल मकान के ऊपर चढ़ा हुआ और जो कहता था कि ऊंट खो गया है। एक तुम पागल हो कि राजा के महल को तुम सराय कह रहे हो, धर्मशाला कह रहे हो, ये सराय नहीं है, सम्राट का निवास स्थान है। उसने कहा कि तुमसे बात नहीं करूंगा, सम्राट से ही बात करूंगा। वो भीतर गया दरबार में, उसने जाकर सम्राट से कहा कि मैं सराय में कुछ दिन मेहमान होना चाहता हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं? उस सम्राट ने कहा कि बड़ी मुश्किल की बातें हैं, ये मेरा निवास स्थान है, सराय नहीं। लेकिन वो अजनबी आदमी कहने लगा निवास स्थान कुछ वर्षों पहले मैं आया था, तब यहां मैंने इसी सिंहासन पर दूसरे आदमी को बैठे देखा। सम्राट ने कहा वो मेरे पिता थे, उनका देहावसान हो गया। उस अजनबी आदमी ने कहा मैं उनके पहले भी आया था, तब मैंने तीसरे ही आदमी को बैठे देखा था। उस आदमी ने सम्राट ने कहा वो मेरे पिता के पिता, वो भी चल बसे। वो आदमी हंसने लगा, उसने कहा कि जहां मेरे देखते देखते रहने वाले बदल जाते हैं उसको निवास स्थान कहना उचित होगा। तुम कितने दिन तक यहां रहोगे? जहां तक मैं समझता हूं जब मैं दोबारा आऊंगा चौथा आदमी मिलेगा, वो कहेगा कि पिताजी थे वो जो पहले बैठे थे, उनका देहावसान हो गया। इसलिए मैं इसे सराहन कहता हूं और कुछ दिन यहां ठहर जाना चाहता हूं, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है। उस सम्राट को एकदम ख्याल आया कि यह आदमी वही होना चाहिए जो रात ऊंट खोज रहा था। उसने उस सम्राट में उतर के उसके पैर पकड़ लिए। उस आदमी ने कहा मेरे पैर मत पकड़ो, अपने ही पैर पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारे पैर तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम्हें जाना नहीं है। तुम्हारे पैर तुम्हें वहां पहुंचा रहे हैं जहां पहुंचने को कुछ नहीं है। तुम्हारे पैर तुम्हें उस यात्रा पर गतिमान किए हुए हैं जो शून्य में समाप्त होती है। अपने ही पैर पकड़ो और उस तरफ चलो जहां जीवन है, जहां सत्य। वो आदमी, वो सम्राट उसी दिन उस महल को छोड़ के चला गया। उसके घर के लोग कहने लगे महल को छोड़ के आप कहां जा रहे हैं? उसने कहा महल होता तो मैं छोड़ के नहीं जाता। सराय है जिसे छोड़ ही देना पड़ेगा, उसे पकड़ के रखने से परेशानी ही होने को और कुछ भी नहीं। लेकिन हम जिंदगी में सराय को घर समझे हुए हैं, कोड़ियों को धन समझे हुए हैं, आसपास की भीड़ को मित्र परिवार समझे हुए हैं, और एक चीज जिसे समझने से कुछ हो सकता था उसको भर अंधेरे में डाले हुए हैं, वो स्वयं के होने को अंधेरे में डाले हुए हैं। कोई अगर आपकी छाती पे आके द्वार खटखटाए और पूछे कौन है भीतर, तो जैसा बाजीर ने कहा था खोज रहा हूं 50 साल से मुझे पता नहीं चला, ऐसा आप कह सकेंगे कि खोज रहा हूं पता नहीं चला? खोजा ही नहीं, खोजा ही नहीं है। खोजे और पता ना चले तो भी एक बात है, लेकिन खोजा ही ना हो तब तो किसी दूसरे को उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता। जीवन क्रांति की दिशा में पहला सवाल है मैं क्यों हूं, यह अस्तित्व क्यों है, हम किस लिए श्वास ले रहे हैं, किस लिए सुबह उठते हैं, किस लिए रात सो जाते हैं। जीवन एक प्रश्न बनना जरूरी, जीवन एक इंक्वायरी बननी जरूरी, जीवन एक जिज्ञासा और खोज बननी जरूरी। लेकिन हम तो दूसरों की मान लेते हैं, खुद तो खोजते नहीं। दूसरे कह देते हैं यही जीवन है, बाप बेटे से कह देता है यही जीवन है और बेटा मान लेता है, गुरु विद्यार्थियों से कह देते हैं यही जीवन, नेता अनुयायियों को कह देते हैं यही जीवन, जाने वाले आने वालों को कहते चले जाते हैं यही जीवन है, और हम सब मानते चले जाते। जो इस तरह मानते चला जाता है वो आदमी तो अपने को आदमी कहलाने का हकदार भी नहीं है, उसने अपनी तरफ से प्रश्न भी नहीं पूछा, उसने ये भी नहीं पूछा ये जीवन है, और अगर ये जीवन नहीं है तो फिर जीवन क्या है। हम तो जैसे मालूम होता है जीवन के संबंध में भी लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं, वोट लेकर पता लगा लेते हैं कि जीवन क्या है, जो सारे लोग कहते हैं वो मान ले। मैंने सुना है एक गांव में एक आदमी मर गया, वो मरा नहीं था, बेहोश हो गया, लेकिन गांव के लोग तो जल्दी में होते हैं, कोई मर जाए तो जल्दी उसे विदा करना चाहते हैं, जगह खाली हो एक और आदमी उसकी जगह आ सके। एक राष्ट्रपति मरता है वो मर भी नहीं पाता, दूसरे की दौड़ शुरू हो जाती, उसको पहुंचा भी नहीं पाते कि जहां पहुंचाने जाते हैं वहां चेहरे तो लटके रहते हैं लेकिन भीतर खोज जारी रहती है कि कौन कौन बैठा है इसकी जगह। वो आदमी मर गया था, उसे जल्दी से वो कब्र में उसको जल्दी से उन्होंने बांधा अर्थी और ले चले, वो आदमी मरा नहीं था सिर्फ बेहोश था। गांव के अधिकारियों ने भी प्रमाण पत्र दे दिया कि वो मर गया, जिंदा आदमी की कोई तलाश नहीं करता, मरे हुए आदमी की कौन तलाश करता है। प्रमाण पत्र दे दिया गया कि वो मर गया है, वो उसे ले गए। वो जब उसे कब्र में उतारने को नीचे उतारा तो वो आदमी करवट लेकर उठ के बैठ गया और उसने कहा लेकिन मैं जिंदा हूं। गांव के लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम प्रमाण पत्र लाए कि तुम मरे हो, और अधिकारी ने दिया हुआ, और हमारा अधिकारी कभी भूल नहीं कर सकता। उस आदमी ने कहा होगा ये, लेकिन मैं जिंदा हूं। लेकिन उन लोगों का हम कैसे मान सकते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। उस आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, 50 आदमी उसको विदा करने आए थे, उसमें गांव का एक न्यायाधीश भी था, उसके निष्पक्ष होने का ख्याल था। उसने उस न्यायाधीश से हाथ जोड़े कि आप कृपा करके कुछ निर्णय करें, मैं जिंदा हूं। उस न्यायाधीश ने कहा आप लोगों ने कथित मरे हुए आदमी का वक्तव्य सुना, आप सब लोगों की क्या गवाही है? उन सब लोगों ने कहा हम कैसे अधिकारी के खिलाफ हम कैसे बोल सकते, सारे गांव के सामने प्रमाण पत्र दिया गया है कि आदमी मर गया, हम मानते हैं कि आदमी मर गया। उस न्यायाधीश ने कहा तब मैं भी निर्णय देता हूं कि इसे दफना दिया जाए, ये आदमी जिंदा नहीं। आप क्यों हंसते? वो तो मरने के संबंध में दूसरों से निर्णय लिया था, हमने तो जीवन के संबंध में दूसरों से निर्णय लिया हुआ है। जीवन के संबंध में हम दूसरों की बात माने हुए बैठे, दूसरे कहते हैं यही जीवन, दौड़ो, धन कमाओ, मकान ऊंचा से ऊंचा बनाते चले जाओ, जमीन से चांद तक की यात्राएं करो और मरो, यही जीवन, दूसरे कहते हैं। हजारों हजारों साल की गवाही, न्यायाधीश कहते हैं, नेता कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं, चारों तरफ की भीड़ कहती है, और इस भीड़ के दबाव में हर आदमी मान लेता है यही जीवन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जीवन बिल्कुल नहीं, ये मरने से भी ज्यादा बदतर, इसका जीवन से कोई भी संबंध नहीं, जीवन कुछ बात ही और, ये सिर्फ आजीविका, ये लाइफ नहीं है, सिर्फ लिविंग, ये सिर्फ रोटी रोजी कमाना, और रोटी रोजी कमाने का उपयोग है अगर उस जीवन की खोज जारी हो, और अगर उस जीवन की खोज जारी नहीं है तो रोटी रोजी को कमाना बिल्कुल फिजूल, बेमानी, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। जिस बीज से फूल आने को ना हो उसमें फिर पानी और खाद डालना बेमानी, खाद और पानी हम इसलिए डालते हैं कि फूल आ सके, फूलों के लिए खाद और पानी है, लेकिन खाद और पानी हम दिए चले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पौधे का जीवन का एक ही लक्ष्य कि खाद और पानी मिलता चला जाए, न कभी फूल आते हैं, न कभी सुगंध फैलती है, न कभी कोई वीणा बजती है। क्या है ये, कैसा जीवन? एक प्रश्न उठ जाना जरूरी है, क्या यही जीवन है? बहुत कठिन है प्रश्न पूछना, दूसरों से पूछना तो बहुत सरल है, क्योंकि बंधे बंधाए उत्तर दूसरों के पास तैयार, खुद से पूछना बहुत मुश्किल, क्योंकि वहां बंधे बंधाए उत्तर नहीं है, वहां प्रश्न पूछने का मतलब, वहां प्रश्न पूछने का मतलब एक लंबे श्रम और एक साधना और यात्रा से गुजरना है। लेकिन हमने जीवन के सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जवाबों को बांध के तय करके रख लिया है, सब हमें सिखा दिया गया है, सब कल्टीवेटेड उत्तर है हमारे पास, और जब भी जिंदगी सवाल उठाती है हम फौरन उत्तर दे देते, अपना दे देते हैं, दूसरों से दिलवा लेते हैं। हम भी जो उत्तर देते हैं वो भी दूसरों से सीखा हुआ उत्तर ही है, वो भी हमें फीड इन किया गया है, वो भी बचपन से हमारे दिमाग में डाला गया है। अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं ये जीवन नहीं है, शरीर का जीवन जीवन नहीं है, आत्मा का जीवन जीवन, वो आदमी भी हो सकता है किसी किताब में पढ़कर कह रहा हो, किसी गुरु से सुनकर कह रहा हो, और 100 में 99 मौके यही है तो उसने किसी से सुन के ये बात कही। अगर वो सुनकर कह रहा है तो ये भी बेमानी है, इसमें भी कोई अर्थ नहीं। कौन जानता है आत्मा है या नहीं, खुद ही जानना पड़ेगा, दूसरे के उत्तर काम नहीं दे सकते। कौन कह सकता है कि शरीर के साथ सब नहीं मर जाता है? जो जानता है वही कह सकता है, लेकिन उसके कहे हुए का उपयोग दूसरे के लिए क्या? दूसरे के लिए तो आकाश में गूंजती हुई आवाज से ज्यादा नहीं है उसकी बात। कोई कहता है कि आत्मा है, मैं कहता हूं कि आत्मा है, क्या मतलब है इससे? आप कोई भी तो मतलब नहीं, एक शब्द गूंजता है और खत्म हो जाता है, हम शरीर ही रह जाते हैं, इस शब्द के सुनने से हम आत्मा नहीं हो जाते। हाँ ये हो सकता है कि आप इस शब्द को सीख लें और याद कर लें, और जब जिंदगी सवाल पूछे तो आप कहने लगे मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, वो सब झूठी बकवास हो। ये जानना पड़ेगा, ये जानना तब होगा जब ये इंक्वायरी, ये प्रश्न हमारे प्राणों में तीर की तरह उतर जाए, हमारे रोए रोए को घेर ले, हमारा कण कण पूछने लगे कि मैं हूं कौन, मैं किस लिए हूं। हमने कभी नहीं पूछा, अगर प्यास लगाए हमें तो जितने जोर से हम पूछते हैं पानी कहाँ है, उतने जोर से भी हमने नहीं पूछा कि जीवन कहाँ है। अगर भूख लगाए तो जितने प्राणों में क्रंदन होने लगता है, उतना भी जीवन के लिए हमारे प्राणों में कभी कोई रुदन नहीं उठा। फिर लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं ईश्वर को खोजना है, उनके मन में इतनी प्यास भी नहीं जितनी पानी के लिए हो, वो कहते हैं मोक्ष कहाँ है, और वे ऐसे पूछते हैं कि जैसे कोई उन्हें उठाए और वहां पहुंचा दे। कौन पहुंचाएगा किसको? और ईश्वर कहीं बैठा है कि आप चले जाएंगे और वो मिल जाए? क्या आप किसी मंदिर में हाथ जोड़ लेंगे और नरियल फोड़ देंगे और कोई मंत्र पढ़ लेंगे वो मिल जाए? वो है तो आपके भीतर है, अगर कुछ भी है सत्य तो वो आपके साथ है, उसे खोजना पड़ेगा। खोजना बहुत कष्टपूर्ण है, बहुत आर्डुअस। असल में बंधे हुए उत्तर हमेशा आसान है, लेकिन बंधे हुए उत्तर आदमी को पागल किए दे रहे हैं। सारी दुनिया एक मैड हाउस हो गई बंधे हुए उत्तरों के कारण। मैंने सुना है एक गांव में सम्राट आने को था, गांव के जो खास खास बड़े लोग थे उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश किया जाने को था। गांव में एक फकीर भी था, वो गांव का फकीर भी बहुत प्रसिद्ध था, गांव के लोग उसे पूछते थे। गांव के लोगों ने कहा हमारा फकीर भी जाएगा और नंबर एक वही खड़ा होगा हमारे गांव की तरफ से सम्राट से मिलने। लेकिन सम्राट के काम करने वाले नौकर चाकरों ने कहा फकीर कभी सम्राट से मिला नहीं, उसे तौर तरीका मालूम नहीं, शिष्टाचार मालूम नहीं, वो कुछ गड़बड़ कर दे, कुछ कह दे तो फकीर को सब सिखा दिया जाना चाहिए कि वो क्या क्या उत्तर दे। गांव के लोगों ने कहा हम इसके लिए राजी हैं। फकीर भी राजी हो गया, उसने कहा मुझे पता नहीं दरबार में क्या कहना क्या पूछा जाएगा, सब गड़बड़ हो सकता है। राजा के आदमियों ने फकीर को कुछ चार छह बातें सिखाई। पहला तो उन्होंने कहा कि सम्राट आपसे पूछेंगे आपकी उम्र क्या है, वृद्ध फकीर है, आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा मेरी उम्र 70 वर्ष। कहा आप ठीक से याद रखना, पहले पूछेंगे आपकी उम्र कितनी, फिर आपसे वो पूछेंगे कितने दिन से आप साधना कर रहे हैं। उसने कहा मैं 30 वर्ष से साधना कर रहा हूं। ऐसे चार छह प्रश्न तैयार करवा दिए, फिर सम्राट आए और सब गड़बड़ हो गई। सम्राट ने पहले पूछा कि आप कितने दिन से फकीर हो गए हैं, कितने दिन से साधना कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा 70 वर्ष, क्योंकि उत्तर तो तैयार था। सम्राट ने कहा 70 वर्ष से, तब तो आपकी उम्र बहुत होगी, आपकी उम्र कितनी? उस आदमी ने कहा 30 वर्ष, उत्तर तो तैयार था। सम्राट ने कहा कि इम्पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकता, ये तो असंभव है। 30 साल आपकी उम्र है और 70 साल से आप साधना कर रहे हैं, आप पागल तो नहीं है? या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूं। उस फकीर ने कहा हम दोनों पागल हैं। सम्राट ने कहा क्या मतलब तुम मुझे पागल कहते हो? उस फकीर ने कहा कि निश्चित, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हो और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, और सब तैयार और पहले से नौकर चाकरों ने सब सिखा के रखा है कि गड़बड़ करना मत। आप पागल हूं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पागल हूं क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी, सब उत्तर तैयार। हमारे सब उत्तर भी तैयार है। अगर परमात्मा के सामने कभी हम खड़े किए गए और परमात्मा ने हमसे कुछ सवाल पूछे, तो एक आध उत्तर आपका अपना होगा, एक आध ऐसा उत्तर होगा जो आप कह सके मैं दे रहा हूं। अगर एक भी उत्तर ऐसा आपके पास नहीं है, तो आपको जीवन की कोई रूप रेखा, कोई ओर छोर कुछ भी नहीं मिल सकता। परमात्मा के सामने आप खड़े हैं समझ ले, और पूछा गया है कुछ, एक भी उत्तर आपके पास अपना है, या कि सब सीखा हुआ, स्कूल में सीखा हुआ, पाठशाला में सीखा हुआ, गुरु के पास, साधु के पास, मुनि के पास, शास्त्र में, समाज से, माँ बाप से, सब सीखा हुआ, एक उत्तर आपका अपना नहीं? कम से कम जीवन के संबंध में तो एक उत्तर अपना होना चाहिए। जीवन क्या है ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता हमारे भीतर, उत्तर कहां से आएगा ये प्रश्न ही हमने नहीं पूछा है, और हम पूछने में डरते भी, क्योंकि अगर हम ये पूछेंगे तो जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वो सब अस्त व्यस्त होना शुरू हो सकता है। एक आदमी पागल की तरह धन इकट्ठा किए जा रहा है, अगर वो पूछे कि जीवन क्या है तो निश्चित है ये बात कि पागल की तरह कल धन इकट्ठा नहीं कर सकेगा, ये प्रश्न सब गड़बड़ कर दे। अगर धन पागल की तरह इकट्ठे करते चले जाना है तो प्रश्न से बचना जरूरी है, इसलिए हम सब अवॉइड कर रहे हैं, जिंदगी के असली सवालों को हटाते हैं, कहते हैं कल पूछ लेंगे। जवान आदमी कहता है अभी तो मैं जवान हूं, परमात्मा की बातचीत, बुढ़ापे में पूछ लूंगा। आदमी कहता है कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे। रोज हम आगे टालते हैं, रोज हम आगे टालते हैं, क्यों इतना डर है? जीवन के असली सवाल जो अभी इसी वक्त पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी का अगर कोई भी अर्थ खुल सकता है तो अभी और यहां, हियर एंड नाउ, कल नहीं, क्योंकि कल तो है ही नहीं, जब भी है आज और अभी।
आइए जानते हैं ओशो का संदेश, ब्रिज बनो, एक पत्र जो उन्होंने अपने मित्र को उसके जन्म दिवस संदेश के रूप में लिखा था। प्रिय विजय बाबू, स्नेह, यह जानकर बहुत प्रसन्न हूं कि जीवन यात्रा के 23 वर्ष तुम्हारे पूरे हो रहे हैं। इस तरह बहुत वर्ष तुम पूरे करो, यह कामना करता हूं। जीवन एक बहुमूल्य अवसर है, पर उसका मूल्य जीने वाले पर निर्भर होता है। व्यक्ति जो अपने को बनाता है वही बन पाता है। प्रत्येक स्वयं अपना निर्माण है। ईश्वर और शैतान दोनों की संभावनाएं हम में होती हैं। मनुष्य तो केवल बीच का सेतु मात्र है। हम पीछे भी लौट सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। पीछे लौटना जीवन को व्यर्थ खो देना है। आगे बढ़ने में ही सार्थकता है। आगे बढ़ने के इस संकल्प को ही मैं सच्चा जन्म कहता हूं। उस दिन ही मनुष्य द्विज बनता है। एक जन्म माँ बाप से मिलता है, वह शरीर का जन्म है। दूसरा जन्म आत्मा का जन्म स्वयं को देना पड़ता है। संकल्प और साधनापूर्ण जीवन योजना से यह होता है। यह तुम करो, ऐसी मेरी भावना है। तुम्हारी वर्षगांठ पर यही मेरा संदेश है। शरीर नहीं, आत्मा को जगाओ, वही सच्चा जन्म और जीवन का आरंभ है। उसे पाकर ही शांति और आनंद के द्वार खुलते हैं और प्रभु निकट आता है। सबको मेरा विनम्र प्रणाम, ओशो। यह पत्र प्रेम की झील में अनुग्रह के फूल पत्रों के संकलन से लिया गया है। और एक बार फिर मित्रों, जन्म मिलता है, जीवन खोजना पड़ता है। जीवन की खोज एक कला है और इसी कला के साथ जीवन को जिए। इन्हीं शुभकामनाओं और ओशो के प्रेम के साथ ओशो रेडियो का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।
dancing in the moonlight. Just the other night, bumped into my shadow. He was dancing to my right. Said, "Hey, buddy, haven't seen you in a while. What you doing dancing in the light and kicking in such style?" Shadow, he replied. Absence of light is one thing, but the power of love cannot be denied. Came to tell you, gather up your lover, hard rain's gonna fall. Head for the hills, out of trouble where you can't stand so tall. Yeah. Now is now, and then was then. I always thought that you'd be my friend. It's all I got with you. My family circle, a circle of friends, a circle of silence, a circle of love, a circle of stars, circle of circle.